भूमिका। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में लगातार 15-16 वर्षों से छात्रों को विशेष रूप से मध्यकालीन हिंदी कवियों को पढ़ाते और पढ़ते हुए समय समय पर मेरे मन में अनेक सवाल उठते रहे हैं। इस क्रम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजरविशा द्विवेदी की ऐतिहासिक मान्यताओं और साहित्य मूल्यांकन संबंधी उनके मतभेदों तथा इस संबंध में प्रगतिवादी आलोचना में किसी निभ्रांत रवैये के अभाव से मेरी उलझन और बढ़ती गई। मैंने महसूस किया कि द्विवेदी जी के संपूर्ण साहित्य का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए और इसी बीच डॉक्टर नामवर सिंह की बहुचर्चित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज प्रकाशित हुई, जिसने द्विवेदी जी के साहित्य के प्रति उत्पन्न मेरी अभिरुचि को और भी पुष्ट किया। प्रस्तुत पुस्तक आचार्य हजरप्रसाद द्विवेदी परंपरा बोध और साहित्य में मैंने आचार्य द्विवेदी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का समग्रता आकलन करने का भरसक प्रयास किया है। समग्र आकलन से मेरा अभिप्राय यह है कि किसी रचनाकार की समस्त रचनाओं को एक दूसरे के संबंधों में पढ़ना और गुणना। ऐसा करने पर एक तो रचनाओं के अलक्षित संदर्भ भी समझ में आ जाते हैं और दूसरे रचनाकार को उसकी समग्रता में जांचने परखने का अवसर भी मिलता है। द्विवेदी जी के कृतित्व को तीन अंगों में बांटा जा सकता है, उपन्यास, निबंध आलोचना तथा इतिहास लेखन। इन तीन अंगों को द्विवेदी जी के व्यक्तित्व से अलग नहीं किया जा सकता। निबंध और उपन्यास की तो बात ही छोड़िए, उनकी आलोचना पर भी उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। उपर्युक्त समग्र अंशों में एक सूत्रता स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि उनके चरित्र के रचनात्मक अंशों को रेखांकित किया जाए। इसलिए पुस्तक का प्रारंभ उनके जीवन संघर्ष के विविध आयामों से किया गया है। उपन्यासों की चर्चा करते समय उसमें उनके पांडित्य, लोकोन्मुखता, निबंधत्व और इतिहास बोध को भी देखने का प्रयास किया गया है। यहाँ यह भी लक्षित किया गया है कि उनके उपन्यास की रचना प्रक्रिया अंग्रेजी उपन्यासों के अनुकरण पर न होकर भारतीय परंपरा के मेल में है। इसमें कुछ उन सूत्रों का भी समावेश किया गया है जिनके आधार पर यदि कोई चाहे तो स्वतंत्र रूप से विचार कर सकता है, क्योंकि उपन्यासों का रूप विन्यास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह एक गत्यात्मक इतिहास बोध को लिए हुए है। द्विवेदी जी की असली पहचान उनके वैयक्तिक निबंधों द्वारा होती है। वास्तविकता तो यह है कि उनके निबंधों का फैलाव उनके उपन्यासों, विचारात्मक निबंधों, आलोचनाओं और साहित्य के इतिहास में भी देखा जा सकता है। चूंकि यह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व का घनिष्ठतम अंग है, इसलिए इसकी चर्चा प्रथम अध्याय में किंचित विस्तार से की गई है। द्विवेदी जी का इतिहास चिंतन परंपरा से नैरंतर्य, लोकोन्मुखता और भविष्य की चिंता के साथ जुड़ा हुआ है। उनके इतिहास लेखन में विशेष प्रकार की मौलिकता दिखाई पड़ती है, जो आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन में कई अर्थों में भिन्न है। इस भिन्नता को विशिष्ट रूप से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जिसमें दो महान आचार्यों के इतिहास दृष्टि की अपनी अपनी विशेषताओं को उजागर किया जा सके। अतः इस प्रयास को प्रयास ही माना जाना चाहिए, किसी प्रकार का दावा करने का कोई प्रयत्न नहीं, बस मुझे इतना ही कहना है। चौथी राम यादव, हिंदी विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 14 जनवरी 1989। विषयक्रम, प्रस्तावना, भूमिका, त्र्यंबक का अट्ठहास, क व्यक्तित्व की केंद्रीय धुरी, ख अंतर्विरोधों का गत्यात्मक पक्ष, दूसरा उपन्यास, रचना प्रक्रिया और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, क बाण भट्ट की आत्मकथा, क्लासिकी से फूटती आधुनिक रचनाशीलता, ख चारुचंद्र लेख, सामंती व्यवस्था की पतन गाथा, ग पुनर्नवा, उपभोक्ता दृष्टि का अस्वीकार, घ अनामदास का पोथा, तप नहीं केवल जीवन सत्य, तीसरा निबंध और आलोचना, साहित्य ही मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, क सांस्कृतिक चिंता, ख सौंदर्य बोध, ग साहित्य का गतिशील चिंतन, चौथा इतिहास दृष्टि, उत्थान मूलक निरंतर, क आचार्य शुक्ल और आचार्य द्विवेदी का दृष्टिभेद, ख पांडित्य की लोकोन्मुखता, शास्त्र और लोक का द्वंद्व, ग काल निर्धारण, मध्यकालीन बोध की आधुनिकता।